दे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध सातवां है ना, और अध्याय तीसरा श्लोक संख्या 29। मेरे पीछे बोली, त्वमीश से जगतस्तस्थुसश्च प्राणेन मुख्येन पति प्रजानां चित्तस्य चित्तैर् मन इन्द्रियाणां पतिर् महान् भूत गुणाशयेशः त्वमीशिषे जगतस्तस्थुसश्च प्राणेन मुख्येन पते प्रजाना चित्तस्य चित्तैर् मन इन्द्रियाणां पतेर महान भूत गुणाशयेशः त्वमीशिषे जगतस्तस्थुसश्च प्राणेन मुख्येन पते प्रजाना चित्तस्य चित्तैर् मन इन्द्रियाणां महान भूत गुणाशयेश। बोलिए शब्दार्थ, बोलिए तम आप ईश से वास्तविक नियंत्रण करते हो जगतः चल प्राणियों का, तस्थुसः स्थिर रहने वाले च तथा प्राणेन प्राण से मुख्येन समस्त कार्यकलापों का उद्गम पति ही स्वामी प्रजानाम समस्त जीवों का चित्तस्य मन का, चित्त है चेतना से मनः मन का, इंद्रियाणाम तथा दो प्रकार की इंद्रियों कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का पति ही स्वामी महान महान भूत भौतिक तत्वों का गुण तथा भौतिक तत्वों के गुण आशय इच्छाओं का ईशः परम स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, आप ही इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता हैं और उनके चेतना को प्रेरित करते रहते हैं। आप मन और कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियों को धारण करते हैं, अतएव आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता हैं। आप समस्त इच्छाओं के भी नियंता हैं। तो अभी जो हमने श्लोक अनुवाद पढ़ा, तो इसमें से कितने लोग जानते हैं कि कौन कह रहा है, किससे कह रहे हैं ये बात? कौन कह रहा है, किससे कह रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज्यादा लोग नहीं जानते कौन कह रहा है, किससे कह रहे हैं? हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की है और ब्रह्मा जी उनको वरदान देने के लिए आए हैं, तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। इस श्लोक के शब्द क्या हैं? तुम ईश से का मतलब है आप नियंत्रण करते हैं, तुम आप ईश से नियंत्रण करते हैं। जगतः, जगतः का मतलब है चर प्राणियों का, चलने फिरने वाले। और तत्थुता, तस्थुता का मतलब है अचर। चर और चर दो प्रकार के प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन अगर बड़े मोटे तौर से देखा जाए तो दो प्रकार के हैं, चर और अचर। प्राणे न मुख्य ने, मुख्य प्राण के द्वारा आप नियंत्रण करते हैं। आप मुख्य प्राण हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मा जी हैं वो सब प्राणियों के मुख्य प्राण हैं या मुख्य प्राणी हैं। पति ही प्रजानाम, आप प्रजाओं के पति हैं, समस्त प्रजाओं के पति हैं। चित्त से चित्त मन इंद्रियाणाम, तो चित्त के भी चित्त आप हैं, मन और इंद्रियों के भी आप नियंता हैं। पति मन और इंद्रियों के भी पति हैं, महान महान पति हैं। भूत गुण आशयसा, भूत का मतलब पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और गुण का मतलब तीन गुण भी माने जा सकते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और आशय का मतलब इच्छाएं, ईशा का मतलब ईश्वर। तो आप ईश्वर हैं। तो कई प्रकार से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को ईश्वर कहा कि आप ईश्वर हैं, नियंता हैं, इस प्रकार से। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में स्पष्ट इंगित किया गया है कि प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत जीवन है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत जीवन है ना। तो यद्यपि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है, लेकिन तो भी प्रभुपाद जी अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य में एक मुख्य बात समझा रहे। फिर भी इस तात्पर्य में भी, हालांकि असुर है, हिरण्यकश्यप एक असुर है और ब्रह्मा जी को परमेश्वर मान रहा है, तो वो तो सही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ईश्वर है परमा कृष्ण, तो कृष्ण ही परमेश्वर है। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप की भी इस बात से प्रभुपाद जी एक गुण निकाल रहे हैं, एक गुण ले रहे हैं, एक शिक्षा ले रहे हैं कि आजकल के जो असुर हैं वो हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। वो क्या कहते हैं? यहाँ तो मुख्य प्राण, मुख्य प्राणी मतलब पूरे जगत का जो नियंत्रा है, नियंता है या स्रोत है, वो एक मुख्य प्राणी है। लेकिन आजकल के जो असुर हैं, शिक्षित हैं, वैज्ञानिक हैं, जो भी हों, तो वो क्या कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, ये जगत जो है पदार्थ से पैदा हुआ है, जड़ वस्तु से ये सब पैदा हुआ है। कितना ज्ञान है, हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा गए गुजरे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हालांकि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को परमेश्वर मान रहा है, फिर भी किसी एक व्यक्ति को तो मान रहा है कि भाई कोई एक व्यक्ति है जो पैदा कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है, है? आजकल के जो असुर हैं वो तो इतने गए गुजरे हैं, है? कि पूरे जगत में जो है कोई नियंत्रण करने वाला कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, निर्जीव वस्तु से जो है सब पैदा हुआ है और कोई नियंत्रण है ही नहीं, किसी का नियंत्रण नहीं है। इतनी आंखें बंद मनुष्य होते हुए सोचिए कितना ज्ञान, कितना ज्ञान है। और एक प्रभुपाद ही ऐसे साधु हुए हैं जिन्होंने खूब निंदा की है और खूब इनकी जो है इनको मतलब है धज्जियां उड़ाई हैं और उनके सामने उनके मुंह पर उनको जो है फूल्स रास्कल्स ये सब शब्द का प्रयोग किया है। कोई साधु ऐसा नहीं हुआ। इतने अज्ञान, इतना मूर्ख है कि पूरे जगत में जो है किसी का नियंत्रण नहीं है, और कैसे जो है सब कुछ नियंत्रित है, देखो कैसे सब कुछ नियंत्रित है। इतना अज्ञान, इतना अज्ञान। तो इसलिए प्रभुपाद जी हिरण्यकश्यप के वास्ते भी एक गुण निकाल रहे हैं कि प्राणन मुख्य है, कोई मुख्य प्राणी है इस जगत का है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा को परम जीव कृष्ण ने उपदेश दिया था, है ना। अब ब्रह्मा जी को भी जो उपदेश है वो परम जीव कृष्ण ने दिया, तो एक और उससे भी श्रेष्ठ जीवन है, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ जीवन है। तो हिरण्यकश्यप नहीं जान रहा है इस बात को, कम से कम इतना तो है कि भाई किसी को तो मान रहा है, किसी जीवित प्राणी को मान रहा है कि उससे सब कुछ पैदा हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप अगर सोचें कि भाई आपके पिता हुए, उनके भी पिता रहे हैं, उनके भी पिता हुए, तो आप अंत में कहाँ पहुँचेंगे, ब्रह्मा जी तक पहुँचेंगे, है ना। तो हिरण्यकश्यप तो कम से कम मान रहा है, ब्रह्मा जी को तो मान रहा है कि भाई एक पिता है, सबके पिता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनके भी पिता हैं कृष्ण है, तो थोड़ा सा यही अंतर है, लेकिन इतना अंतर तो नहीं है, इतनी मूर्खता तो नहीं है। कितनी मूर्खता है। किस शुरुआत क्या हुई थी, एक विस्फोट से हुई थी, कोई पदार्थ में जो विस्फोट हुआ और टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसमें जो है मतलब सब प्राणी हो गए, हम लोग हो गए, मनुष्य जो है पहले बंदर था, बंदर से पहले भी कुछ था, मतलब कितना मूर्खता की जो है कल्पनाएं करते रहते हैं। मतलब कोई इस दृष्टि के पहले कोई जीवित प्राणी नहीं था, है ना, ना उसका कोई नियंत्रण है, ना इस समय कोई है नियंत्रण करने वाला। अब वो जो है आकर के तुम्हें तुम्हारे मुंह में चपत नहीं मारता है तो तुम कहते हो, वो ये सोचते हैं कि ये हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कोई नियंत्रण नहीं है, अगर कोई नियंत्रण होता तो मेरे मुंह में आगे चपत मारता, तो कोई चपत तो मार नहीं रहा है, तो उनका जो है और साहस बढ़ता जा रहा है। इसलिए सब लिखित रूप में और सब तरह से जो है वो घोषित कर रहे हैं कि भाई कोई नियंत्रण नहीं है किसी व्यक्ति का इस सृष्टि में, सब कुछ जो है मतलब पदार्थ से ही पैदा हो गया है, सब ऐसे ही विस्फोट हो गया है, पदार्थ में विस्फोट हो गया। अब पदार्थ में विस्फोट हुआ तो किसी ने विस्फोट किया होगा, किसी ने विस्फोट किया होगा नहीं, विस्फोट हो गया अपने आप, विस्फोट हो गया, बिग बैंग थ्योरी, तो बहुत मतलब अज्ञान है। तो इसलिए प्रभुपाद जी मतलब बताते हैं कि हिरण्यकश्यप के इस ज्ञान में प्रभुपाद जी संशोधन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को उसने माना है, तो इस ब्रह्मांड के तो जो है स्वामी ब्रह्मा जी हैं, लेकिन उनके स्वामी कृष्ण हैं, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं आगे, कृष्ण परम जीव है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। एक प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं कृष्ण परम जीव है, क्योंकि परम ईश्वर परमा कृष्णा, है ना, तो एक है कृष्ण, बल्कि ब्रह्मा भी अनेक है, ब्रह्मांड भी अनेक है। तो हिरण्यकश्यप की जो बुद्धि है वो एक ब्रह्मांड तक ही सीमित है कि ये बंद अंडा है, ब्रह्मांड एक बंद अंडा है, जितनी सृष्टि बस इतने ही है, और इसमें ब्रह्मा जी ने पैदा की है, सृष्टि पैदा की है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, और ब्रह्मा भी जीव है, लेकिन ब्रह्मा के मूल स्रोत कृष्ण ही है, अतः भगवत गीता में साथ साथ कृष्ण कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि कृष्ण से परे नहीं है कोई, कि कृष्ण को पैदा करने वाला कोई नहीं। तो हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं जो गलती की है वो यही है कि ब्रह्मा जी आप जो है सब को पैदा करने वाले हैं, आप पति हैं, आप नियंता हैं, है ना, लेकिन गलती क्या हो रही है कि ब्रह्मा के भी नियंता और ब्रह्मा के भी पिता कृष्ण है, और उनका पिता कोई नहीं, उनका नियंता कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये अंतर है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है, कृष्ण ब्रह्मा जी के मूल स्रोत हैं, जिस ब्रह्मांड के मूल स्रोत हैं। तो ब्रह्मा जी जो है इस ब्रह्मांड के सृष्टा है या पिता है, हर कोई ब्रह्मा जी से पैदा हुआ है, ब्रह्मा जी से पैदा हुए जो फिर उनसे और पैदा हुए, फिर उनसे और पैदा हुए, उस तरह से हम लोग पैदा हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कृष्ण से पैदा हुए तो कृष्ण ब्रह्मा जी के मूल स्रोत हैं। आगे ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, अतः कृष्ण के सारे गुण और कार्यकलाप ब्रह्मा जी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु बाद हिरण्यकशिपु का कुछ आंशिक समर्थन कर रहे हैं। क्यों आंशिक समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि आजकल के वैज्ञानिक और शिक्षित लोग तो इतने गए गुजरे हैं कि कम से कम प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ तुम लोगों की नजरों में तुम लोगों की तुलना में वो हिरण्यकशिपु कम से कम एक कदम तो आगे है, एक कदम आगे तो है, कक्षा एक में भर्ती तो हो गया वो किसी प्रकार से। तुम लोग तो बिल्कुल निरक्षर हो, ABCD भी नहीं जानते हो, मनुष्य जीवन की ABCD भी नहीं जानते तुम लोग। इतना बड़ा विज्ञान और इतनी विज्ञान की शाखाएं, टेक्नोलॉजी, इतनी मशीन, ये वो क्या क्या बना दिया है, लेकिन जहां तक मनुष्य के जीवन की आवश्यक जानकारी है उसमें तुम लोग ABCD भी नहीं जानते हो। मतलब पशु पशु पशु, इतने पशु हैं, इतने पशु हैं कि कहा जाएगा दो पैर के पशु हैं या शिक्षित पशु हैं, और शिक्षा अशिक्षित मनुष्य अगर इस सब शिक्षा नहीं जानता है, लेकिन कम से कम इतना जानता है कि कृष्ण परमेश्वर हैं, तो वह इनसे हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है कि कम से कम वो मनुष्य तो बन गया। और ये शिक्षित, इतने शिक्षित होते हुए भी कितने नालायक हैं कि मनुष्य ही नहीं बने, है ना। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब एक कथा मैं सुनाऊंगा, वो कथा बड़ी रोचक है और कुछ हंसाने वाली भी है। हालांकि प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में एक और कथा लिखी है जिसका उल्लेख प्रभुपाद ने कई बार किया है, तो वो कहाँ से वो मैं नहीं जानता। उसमें ब्रह्मा जी द्वारका में कृष्ण से मिलने आते हैं और कृष्ण कहते हैं कौन से ब्रह्मा जी, है ना। तो फिर कृष्ण जो है मतलब बहुत से ब्रह्माओं को बुलाते हैं, लेकिन ये कथा कुछ उसी प्रकार की है, तो इसको आप जो है सुनिए। तो इस कथा के माध्यम से हमें ये समझना है कि एक ही ब्रह्मा नहीं है, एक ही ब्रह्मा नहीं, और दूसरे दूसरे ब्रह्मा जो है हमारे ब्रह्मा जी से ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा एडवांस्ड है। तो ये घटना उस समय की है जब युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ? जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, है ना, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और जो घोड़ा है अश्वमेध का, जो घोड़ा है वो जब छोड़ा जाता है तो उसको कोई चलाता नहीं है, उसको वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उसके गले में कोई रस्सी वगैरह नहीं बंधी होती है कि कोई खींचे उसकी रस्सी को, कोई नहीं। उसके माथे में एक भाल पत्र रहता है, अपनी इच्छा से भी चलता है। उसकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज के जो भेजे हुए अर्जुन हैं और सेना है वो रक्षा कर रही घोड़े की। उसके माथे में जो है भाल पत्र, स्वर्ण पत्र लगा हुआ है कि युधिष्ठिर महाराज ने घोड़ा छोड़ा है, पूरी पृथ्वी के सार्वभौम सम्राट हैं, और जो इस बात को नहीं स्वीकार करता है, उनकी सर्वश्रेष्ठता को नहीं स्वीकार करता है, वो घोड़ा पकड़े, और हम लोग उनकी सेवा के युधिष्ठिर महाराज के हम बलपूर्वक इस घोड़े को छुड़ाएंगे। इस तरह से घोड़ा जो है पूरी पृथ्वी का विचरण कर चुका है, और अचानक क्या हुआ कि वो समुद्र में प्रवेश कर गया। अब बड़ी समस्या हो गई, समुद्र में प्रवेश कर गया, अब समुद्र में तो सेना नहीं जा सकती। तो पांच व्यक्ति जो है समुद्र में जाते हैं, क्योंकि उनके रथ ऐसे हैं जो समुद्र में भी चल सकते हैं, पानी में, आकाश में, हर जगह चल सकते हैं। तो उसमें एक अर्जुन का भी रथ है, भगवान कृष्ण भी हैं, तो वहाँ जाते हैं समुद्र में। तो वहाँ पर बकदाल भी मुनि जो है तपस्या कर रहे हैं, एक टापू है समुद्र के बीच में, बकदाल मुनि तपस्या कर रहे हैं, और अर्जुन कृष्ण उनका दर्शन कर रहे हैं, मतलब मनुष्य लीला। तो भगवान कृष्ण ने जो है उनका सम्मान किया, किनका सम्मान किया? मुनि, कौन से मुनि? बकदालभ है, कठिन ना, बकदालभ है, बकदालभ मुनि है। तो क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, हे मुनि, आप ही साक्षात पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने बीसों ब्रह्मा बीत चुके हैं। क्या भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ही साक्षात पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आपकी आंखों के सामने बीसों ब्रह्मा बीत चुके हैं। आप ही हम सबों के परम पूज्य हैं। आपके दर्शन से युधिष्ठिर का यज्ञ सफल हो गया। अब आप यज्ञ में आइए, युधिष्ठिर महाराज के, तो उनका यज्ञ सफल हो गया। तो भगवान कृष्ण मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो ऋषियों का जो है सम्मान करते हैं, और इतनी बड़ी उम्र है कि बीसों ब्रह्मा बीत चुके हैं भगदान मुनि के सामने। सोचिए, तमेव साक्षात् पुरुषा पुराण त्वया दृष्ट ब्रह्मणां विंशतिश्च सर्वेषां न पूजितमस्त्वमेव जातो यज्ञ सफलो धर्म सूनो। ये सुनकर मुनि को हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई? क्योंकि कृष्ण के महात्म को जानते हैं कि कृष्ण कौन है, और वे मुझे ऐसा बता रहे हैं, तो बीसों ब्रह्मा कृष्ण के सामने तो 20,000 और 20 करोड़ ब्रह्मा बीत चुके हैं, कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए उनको हंसी आ गई कि ये भगवान जो है मुझको लज्जित कर रहे हैं। ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि ऐसे भगवान जो है मुझे बताते हैं कि मेरे सामने बीसों ब्रह्मा बीत चुके हैं, मैं पुराण पुरुष हूँ, है ना। तो हंसी आ गई और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु आपने तो मेरे ऊपर ये अच्छा गर्व का भार लाद दिया है। क्या किया आपने मेरे ऊपर? गर्व, गर्व मतलब अहंकार। ये अहंकार का भार मेरे ऊपर, एक बहुत बड़ा अहंकार का भार मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। प्रसन्न नहीं हुए बल्कि चिंतित हो गए कि मेरे सिर पर आपने बहुत बड़ा घमंड का भार लाद दिया है, परंतु मेरा और ब्रह्मा जी का सारा गर्व पहले ही गल चुका है। पहले कैसी घटना हो चुकी है कि मेरा और ब्रह्मा जी का सब गर्व गल चुका है। अर्जुन, तुम वो वृत्तांत यत्न पूर्वक भली भांति श्रवण करो। अर्जुन से कह रहे तुम श्रवण करो, श्री कृष्ण तो सब जानते ही हैं, श्री कृष्ण को सब कुछ पता है, लेकिन अर्जुन तुम सुनो, क्योंकि ये तो वेद के भी मूल हैं, कृष्ण तो वेदों के भी मूल हैं, इसलिए तुम श्रवण करो। परम गर्वो विगलन मे समग्र तथा सपंके रोहजन मनश्च तत्त्वं समाकर्णय पार्थ यत्ना कृष्ण सर्वं वेद वेदस्य मूलम। महाकल्प की बात है, उस समय के ब्रह्मा का नाम वेद था। उस समय के ब्रह्मा का नाम क्या था? वेद। उनकी अवस्था 40 वर्ष की हो गई थी। उन ब्रह्मा की अवस्था कितनी हो गई थी? 40 वर्ष की, है ना। ब्रह्मा जी की 40 वर्ष की अवस्था जानते कितना होता है? नहीं पता। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 4,32,00,000,000 साल का है, इतनी बड़ी रात, तो दिन रात मिलाकर के 8,64,00,000,000 साल एक दिन ब्रह्मा जी का, उस हिसाब से 40 साल निकालिए। 8,64,00,000,000 साल में, ठीक है, इसमें 360 का गुणा करिए तो एक साल निकलेगा, फिर इसमें 40 का और गुणा करिए तो ब्रह्मा जी की 40 साल की आयु निकलेगी। कितनी आयु है? तो इतनी आयु थी ब्रह्मा जी की, वेद नाम के ब्रह्मा जी की। वे एक दिन मान सरोवर निवासी एक हंस पर सवार होकर वेद पाठ करते हुए मेरे पास आए। मैं वेद पाठ कर रहा था तो मेरे पास आए ब्रह्मा जी। सुन रहे सब लोग ध्यान से, और गर्व से भरा हुआ वचन बोले। ब्रह्मा जी गर्व से भरा हुआ वचन बोले, कहां पर आए? मेरे पास आए, और मैं क्या कर रहा था? वेद पाठ कर रहा था। वो वेद ब्रह्मा जी का भी नाम वेद है। पठन वेदान मनुष्यो को अधूरुड़ा प्रोवाचेदम गर्व भारेण वाक्यम। हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? तुमने किस लिए अपने मस्तक पर ये पत्ता धारण कर रखा है? मैं समझता हूं कि तुम किसी कामना को लेकर ही ऐसा घोर तप कर रहे हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं ब्रह्मा हूं, तुम पर प्रसन्न हूं, अतः तुम अपना मनोवांछित वर मुझसे मांग लो। कौन बोले? ब्रह्मा जी बोले। तुम्हें पता होना चाहिए मैं ब्रह्मा हूं। प्रसन्नो हम पार्थे प्रार्थय वांछितम च ब्रह्मा हम इत्येवं अवेहि विप्र। ये सुनकर मैंने अभिमान पूर्वक उन ब्रह्मा जी से कहा, जैसे उनके अंदर गर्व भरा था तो मेरे अंदर और ज्यादा गर्व था। मैंने कहा, दुरात्मा हट, दूर जा। मैंने ब्रह्मा जी कहा, दुरात्मा हट, दूर जा। मैंने तेरे जैसे बीसों ब्रह्मा देखे हैं, तू मुझे क्या देगा, जा दूर भाग जा। तच्छ्रुत्वा हम च ब्रुवं गर्वभारात् ब्रह्माणं तं गच्छ दूरं दुरात्मन् मया दृष्टास्त्वादृशा विंशतिश्च त्वं मह्यं किं दास्यसे याहि याहि। मैं ऐसा कह ही रहा था तब तक पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए प्रचंड आंधी प्रकट हो गई। वो आंधी जो है क्या थी, भगवान की छोड़ी हुई आंधी थी। तो ये भगवान जो है अपने भक्तों का गर्व सहन नहीं करते, तुरंत दंड देते हैं कि भगवान की कृपा है। असुरों को दंड नहीं मिलता, उनका गर्व बढ़ता जाता है, अपराध बढ़ता जाता है। तो हम दोनों का जो है गर्व देख करके भगवान ने क्या किया, दंड दिया। अचानक पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए आंधी प्रकट हो गई। कैसी आंधी प्रकट हुई, पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए नीचे से ऊपर उठाए ऐसी आंधी। उस समय अपने झोंके से वृक्षों को तोड़ते हुए उसने हम दोनों को भी विशाल आकाश में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया, विशाल आकाश में पहुंचा दिया। फिर तो जैसे कर्म से प्रेरित हुए जंतु गूलर के एक फल से दूसरे फल में प्रवेश करें, गूलर के फल के अंदर रहने वाले जो जंतु होते हैं वो तो उतना ही दुनिया जानते कि दुनिया इतनी ही है, लेकिन कभी कभी कोई जंतु गूलर के एक फल से दूसरे फल में घुस जाए, कुछ विशेष ऐसे कारण बन जाए कि घुस जाए। उसी तरह हम दोनों भगवान विष्णु के शरीर में फल रूप से लगे हुए उन ब्रह्मांडों में से दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंचे, दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचे। अब वो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मा जी के लिए भी नया था, मेरे लिए भी नया था। दोनों पहुंच गए एक साथ, दोनों को पहुंचा दिया। औदुम्बरादन्य मोम मोदुम्बरम ही विसंतमी जंतवा कर्म नुंगा तथा प्रविष्टो देव देवस्य विष्णोर ब्रह्मांडस्ते फलितस्य द्वितीयम्। अर्जुन, वो ब्रह्मलोक पहले के ब्रह्मलोक से ज्यादा रमणीय था, ज्यादा श्रेष्ठ था। क्या वो जो दूसरे ब्रह्मांड में हम लोग प्रवेश कर गए तो वहां ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर होता है ना, तो ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड से ज्यादा, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक से ज्यादा रमणीय था। उसमें प्रवेश करके मुझे और ब्रह्मा को महान आश्चर्य प्राप्त हुआ कि हम लोग कहां आ गए। तब वहां निवास करने वाले आठ मुख वाले ब्रह्मा, क्या समझे, वहां निवास करने वाले आठ मुख ब्रह्मा ने हम दोनों को बुला करके पूछा, चार मुख वाले ब्रह्मा और मुझे, एक मुख वाला मैं और चार मुख वाले हैं, बुलाकर पूछा, तुम दोनों अपूर्व व्यक्ति किस देश से आए हो, मतलब पहले कभी देखे नहीं, अपूर्व हो तुम लोग, किस देश से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, मेरे सामने ये सब बतलाओ। कौन बोले, आठ मुख वाले ब्रह्मा जी बोले कि मुझे बताओ तुम लोग कहां से आए हो। दोनों दोनों से कस्माद् युवां प्राप्तवन्तः पूर्वौ किन्नामानो संस्थितं मत्पुरस्ता, क्या नाम है, तुम दोनों का नाम क्या है बताओ। तब चार मुख वाले ब्रह्मा ने कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सत्यलोक से आ रहा हूं और पद्मयोनि मेरा नाम है। दूसरा, ये जो मेरी सेवा करने के लिए साथ आया है ये मेरा शिष्य है। शिष्य है और स्पष्ट रूप से बगदाल है, बगदाल भी नाम से प्रसिद्ध है कि मेरा शिष्य है। तो ये सुनकर के आठ मुख वाले ब्रह्मा ठठाकर हंसे और कहने लगे, आप ब्रह्मा है और ये दूसरा शिष्य है, परंतु ये संबंध तभी तक था जब तक तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा था। तुम लोग जो है ब्रह्मा और ये तुम्हारा शिष्य तब तक थे जब तक तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा, अब तुम दोनों ब्रह्मा और शिष्य मेरे शिष्य हो गए हो, अब तुम दोनों मेरे से सो गए हो, अतः अब यहां तुम दोनों स्वस्थ चित्त होकर मेरे शौच के लिए जल और मिट्टी तो ले आओ। मैं टॉयलेट जाऊंगा तो एक जाओ मिट्टी लेने तो एक जाओ पानी लेने के लिए। आठ लोग हमारे ब्रह्मा जी टॉयलेट जाए तो एक पानी ले के आओ एक मिट्टी ले के आओ। शौचार्थम अत्रापि जलम मृदम च समानेताम स्वस्थ चित्तो मदर्थम। आठ लोग वाले ब्रह्मा जब यों कह रहे थे तीनों गमन भरे हुए उसी समय उस प्रचंड आंधी ने मुझे उन दोनों ब्रह्माओं को भी उड़ाकर आकाश में पहुंचा दिया। तो दोनों ब्रह्मा मेरे साथ चक्कर काटते हुए भगवान विष्णु के तीसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। तीसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तीनों, चार मुख वाले ब्रह्मा, आठ मुख वाले ब्रह्मा और मैं भी, तीनों तीसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। उस ब्रह्मांड के निवासी पुण्यात्मा और उदार दाता थे, हम लोगों को देख करके हंसे और पूछने लगे आप लोग कौन है, किस देश से आ रहे हैं। एक के चार मुख हैं, एक के आठ मुख हैं और एक का एक मुख है, कहां से आ रहे हैं, आप लोगों का नाम क्या है, लज्जा का परित्याग करके सारी बातें बताइए। बड़ी लज्जा आ रही थी तीनों को, एक नए स्थान में आ गए तो शर्म तो आएगी, तो बोले लज्जा को छोड़ करके बताओ आप लोग कहां से आए हो। कस्मात् देशात् आगतानां किम्बत तत्सर्वं व्यब्रूत लज्जां विहाय। तब आठ मुख वाले ब्रह्म कहने लगे, वही तो बोलेंगे तीनों में से, वही तो बोलेंगे, वो बोले मैं ब्रह्मा हूं और मनोहर ब्रह्मलोक से आ रहा हूं। ये सुनकर उन लोगों ने कहा अरे चुप रहिए, ऐसा मत कहिए नहीं तो 16 मुख वाले ब्रह्मा सुन लेंगे। यहां पर 16 मुख वाले ब्रह्मा है, धीरे धीरे बात करिए मत बोलिए, आप लोग अपने ब्रह्मापन का अभिमान त्याग कर हमारे साथ आइए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका दर्शन कीजिए। यहाँ पर 16 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, अब छोड़ दो इस विचार को कि आप 8 मुख वाले ब्रह्मा हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा का तो कोई की गिनती ही नहीं है और 1 मुख वाले के तो दास दासानुदास। प्रणाम करो, 16 मुख वाले ब्रह्मा यहाँ बैठे हैं। तब हम लोग भयभीत होकर उन 16 मुख वाले ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए वहां पर गए। तीनों भयभीत हैं, 8 मुख वाले, 4 मुख वाले। तब 16 मुख वाले ब्रह्मा, 4 मुख वाले और 8 मुख वाले ब्रह्मा को देखकर हंसे और कहने लगे अहो आश्चर्य है, महान आश्चर्य है, जो मुझ ब्रह्मा के रहते हुए दूसरे ब्रह्मा भी आ गए, ये कैसे ब्रह्मा है, जब मैं हूं यहां ब्रह्मा तो आप लोग कहां से ब्रह्मा बन गए। 16 मुख वाले ब्रह्मा बोले जा सोच षोडशांशो विरिंचिर दृष्ट्वा चतुर्वक्त्रम मथा अष्टवक्त्रम अहोचित्रम महोचित्रम ब्रह्मण्यपि मयि स्थिते। वे 16 मुख वाले ब्रह्मा जब ऐसी गर्वीली बातें कर रहे थे उस समय ऐसी भयंकर आंधी उठी जिसने हम लोगों को चक्कर में डाल दिया। अब कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए, 16 मुख वाले ब्रह्मा, 8 मुख वाले ब्रह्मा, 4 मुख वाले और 1 मुख वाला मैं। चारों को क्या किया, आंधी ने उड़ाया, तो हम लोगों के पैर ऊपर उठ गए और मुंह नीचे की ओर लटक गए। आंधी ने ऐसे उड़ाया पैर ऊपर और सिर नीचे उठाया और दूसरे ब्रह्मांड में जा गए। वो लोग अत्यंत सुंदर था, 32 मुख वाले ब्रह्मा निवास करते थे, परंतु तो वहां के निवासी किसी भी मनुष्य ने हम लोगों से नाम तक नहीं पूछा। वहां के निवासी लोगों ने हम लोगों से नाम तक नहीं पूछा कि हम लोग कहां से आए। तब संयोगवश हम चारों पर उन ब्रह्मा की दृष्टि पड़ी, कितने मुख वाले ब्रह्मा, 32 वाले में उनकी दृष्टि पड़ गई। उन्होंने कृपा पूर्वक हमें बुलाया और नाम धाम पूछा, कहां से आए हो? चारों चारों लज्जित हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, कोई उनसे बात नहीं करता है, तो ब्रह्मा जी को दे आ गई, इधर आओ इधर आओ, बोलो कहां से आए, क्या नाम है, कहां से आए हो? तो वयम इसमें चत्वारो दृष्ट्वा देवांधरिंचिन आहूता कृपया पश्चात परिपप्रच्छ नाम सह। पहले तो वे अत्यंत गर्व में आकर जोर से हंसे और फिर कहने लगे, ये बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्म तो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन ब्रह्मा है? कौन बोले? 32 मुख वाले, क्योंकि जुगनुओं का प्रकाश तब तक दिखाई देता है जब तक सूर्य का उदय ना हो। तो ये 16 मुख वाले ब्रह्मा, 8 मुख वाले ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा, 1 मुख वाले ब्रह्मा, इनका तब तक महात्म है जब तक मेरे सामने नहीं आते। और सूर्य के सामने जुगनू का क्या महत्व है, अब मेरे सामने इन चारों का क्या महत्व है? प्रहस्य पूर्वं गर्वितोऽतीव सत्यं ब्रह्मा ब्रवीन् अहमेवास्मि नान्यः खद्योता निर्द्योत्यते तावदेव यावत् सूर्योध्वान्तः नाभ्युदेति। ऐसा कहते हुए 32 मुख वाले ब्रह्मा भी उस आंधी की चपेट में आ गए। और हम लोगों के साथ ही आकाश में चक्कर काटने लगे, कैसे? पैर ऊपर और सिर नीचे। और शिखा लटक रही और नीचे है? कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। और दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंचे जहां 64 मुख वाले ब्रह्मा थे, वहां ब्रह्मा ने भी महान गर्व किया। इस प्रकार दुगनी वृद्धि के कारण गर्व में भरे हुए वे सभी ब्रह्मा उन 1000 नेत्र 1000 मुख वाले विराट परमेश्वर के पास जा पहुंचे। 1000 मुख वाले 1000 नेत्र वाले विराट परमेश्वर के पास जा पहुंचे, जिनकी सनक आदि मुनि तथा देवतागण स्तुति कर रहे थे, वो हैं शेष जी। 1000 मुख वाले शेष जी हैं, भगवान हैं, है ना। तो सब लोग आंधी के द्वारा वहां पहुंचे। कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए, 64 मुख वाले, 32 मुख वाले 2, 16 मुख वाले 3, 8 मुख वाले 4, 4 मुख वाले 5 और 1 मुख वाले 6। 6 लोग हुए। अब कहां पर आए? शेष जी के चरणों में आ गए। सनक आदि मुनि और देवतागण स्तुति कर रहे थे। प्राप्त सहस्त्र नयनम सहस्त्र वदनम विभुम स्तूयमानम च मुनिभि सनकांते तथा सुरे। तब उन समस्त ब्रह्माओं को देखकर 1000 मुख वाले परमेश्वर ने कहा, अब ये पहला व्यक्ति मिला है जिसके अंदर गर्व नहीं है। 1000 मुख वाले परमेश्वर ने कहा, आइए आप लोगों का स्वागत है, कहिए आप पूज्यपाद ब्रह्माओं का कहां से सौभाग्यवान हो रहा है? आप लोगों की कृपा से मुझे भी इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त होगी। आप लोग मेरे पास आए हैं तो मेरा बड़ा गौरव है, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान ही है ना। अधतानागतान दृष्ट्वा शास्त्र वदनो ब्रवीन कुतः प्राप्तं पूज्यपाद ब्रह्मा भे स्वागतम ही वह यस्मिन् प्रसाद आलोकेस्मिन् ख्यातिं प्राप्स्यामिनुत्तमाम्। देखो वही 1000 मुख वाले जो शेष जी हैं कारण समुद्र में, और उनके ही सिर पर ये सब ब्रह्मांड रखे हुए हैं, और उनके अंदर कितनी विनम्रता है। उन विराट पुरुष के कहने पर उन ब्रह्माओं का सारा गर्व गल गया। पहली बार सीखा शिष्टाचार क्या होता है, कैसे सम्मान किया जाता है अतिथि का। उन्होंने प्रतिपल लौट कर उन भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। इति ब्रह्माणम पुरुषम प्रणम्य धरणी गताम विहाय गर्वम ब्रह्माण तुष्ट वस्तम मधोक्षजम। तब भगवान प्रसन्न हो गए, उन सभी ब्रह्मा को उन्होंने यथा स्थान नियुक्त कर दिया कि आप लोग अपने अपने स्थान में जाइए, भेज दिया। तब मैं उनका साथ छोड़कर इस समुद्र में आकर बैठ गया, इसलिए अर्जुन उत्तम शास्त्रों के जानकार पुरुषों को गर्व नहीं करना चाहिए। उत्तम शास्त्रों के जानकार पुरुषों को गर्व नहीं करना चाहिए। अब कृष्ण ने जो है मुझे जो बात बोली उससे मुझे गर्व नहीं हो रहा है, कृष्ण तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं मुझे गर्व नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा गर्व पहले ही गल चुका है। तथा प्रसन्नो भगवान यथास्थानम निवेशयन् तान् मृजन्ती अहम् पार्थ विहाय अस्मान् स्तो मुधो तस्मान् गर्वो न कर्तव्या पुंभिः शास्त्र कोविदः। भगदाल मुनि का ये कथन सुनकर अर्जुन और श्री कृष्ण को परम आनंद प्राप्त हुआ। तो ये कथा मैंने सुनाई। अब चर्चा है हिरण्यकश्यपु की कि हिरण्यकश्यपु जो एक असुर है, असुर लोग जो है एक सिद्धांत उनका जो है स्थिर नहीं रह पाता, क्योंकि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के पहले क्या सोच रहा था, हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के पहले ये सोच रहा था कि मैं ब्रह्मा का पद पाऊं, और ब्रह्मा का पद ही शाश्वत है, विष्णु का धाम शाश्वत नहीं है। असुरों का सिद्धांत सात साधु आचार्य कुछ कहते हैं उससे वो नहीं कुछ समझना चाहते, अपनी समझ से जिसको मैं मान लूं सही वो सही है, जिसको गलत मानूं वो गलत है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या विचार किया, ब्रह्मा का पद ही जो है शाश्वत है और विष्णु का पद जो है शाश्वत नहीं है। ठीक है, अच्छा ब्रह्मा का पद शाश्वत है और मैं ब्रह्मा का पद लूंगा। अब एक बार सोचिए, ब्रह्मा का पद अगर शाश्वत है तो मुझे ब्रह्मा का पद कैसे मिल सकता है, लेकिन मैं ब्रह्मा का पद लूंगा। अब ये भी गलत है कि नहीं, गलत है। अगर ब्रह्मा का पद शाश्वत है तो मैं ब्रह्मा का पद कैसे ले सकता हूँ, ब्रह्मा को हटा करके उनके पद से मैं उनके पद में कैसे आ सकता हूँ, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो पद शाश्वत कैसे हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और ध्यान के द्वारा ही वो पद प्राप्त किया, सर्वोच्च पद प्राप्त किया और सब शक्तियाँ प्राप्त की और सबको पैदा किया। कैसा है, ब्रह्मा जी ने तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, भगवान उनको ज्ञान दिया शक्तियां दी तब वो सृष्टि कर पाए, लेकिन नहीं, अपनी तपस्या समाधि के द्वारा खुद ही उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली और सबसे श्रेष्ठ बन गए। तो ये सब गलत है ना सिद्धांत। अब इतनी तपस्या वो कर रहा है, जब ब्रह्मा जी स्वयं आ गए वरदान देने के लिए तो अब उनसे कैसे बोले कि मैं आपको हटा करके आपका पद लेना चाहता हूं, आप कैसे बोले। ब्रह्मा जी आगे बोले कि वर मांगो, तो कैसे बोलेगा। तो फिर उसने विचार अपना बदल दिया, उनसे कैसे बोल रहा है, और यही बोल रहा है कि आप शाश्वत हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सबको पैदा करने वाले हैं, सबके नियंता हैं, ये सिद्धि कर रहा है। तो आप कैसे बोल सकता है कि मैं आपको हटा करके आपका पद लेना चाहता हूं। इसलिए अब क्या वरदान मांगा, आपकी सृष्टि में जितने भी बने जीव हैं, जितने पैदा हुए जीव हैं वो मुझे ना मार सकें, और कई शर्तें उसके ऊपर भी कई शर्तें लगा ली कि दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, जल में ना मरूं, पृथ्वी में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, है ना, पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, कई प्रकार की उसने शर्तें भी जो है मांगी ब्रह्मा जी से। तो ये समस्या होती है, क्योंकि असुर जो है कोई भी ज्ञान शास्त्र साधु आचार्यों से नहीं प्राप्त करना चाहते, इसलिए अपने हिसाब से कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष उनके बदलते रहते हैं, है ना। तो ये समस्या है। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि काल शाश्वत है और मैं भी शाश्वत हूं, तो चाहे जितने जन्म लगे मुझे ब्रह्मा का पद पाना है, और ब्रह्मा का पद पालूंगा तो मैं क्या करूंगा, कर्म के सिद्धांत उलट दूंगा, मतलब जो स्वर्ग जाते हैं उनको नरक भेजूंगा और जो नरक जाते हैं उनको स्वर्ग भेजूंगा। जिन कर्मों से कोई व्यक्ति नरक जाता है उनको क्या भेजूंगा, स्वर्ग में भेजूंगा, और जिन कर्मों से व्यक्ति स्वर्ग जाता है उनको कहां भेजूंगा, नरक में भेजूंगा, ब्रह्मा का पद पालूंगा। ब्रह्मा के पद के ऊपर कोई पद है ही नहीं, ब्रह्मा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अपनी तपस्या अपनी समाधि के द्वारा मैं प्राप्त कर लूंगा, लेकिन बाद में तो समस्या हो गई क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान देने आ गए। ब्रह्मा जी वो तो सोचता है कि मैं अपनी तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा का पद पा लूंगा, बन जाऊंगा खुद ही, क्योंकि यहां तो कोई आ गया मुझे वरदान देने के लिए, अब क्या किया जाए, तब तो मांगना पड़ेगा। अपनी तपस्या से तो कोई शक्ति मिली नहीं, वो वरदान देने के लिए आ गए तो मैं क्या मांगू, अब कैसे कहूँ कि आपका पद लेना है, कि पहले से सोचा था कि ब्रह्मा का पद ही शाश्वत है, अब मैं ब्रह्मा का पद कैसे पा सकता हूं। चलो अगर ऐसा भी कर लूं तो फिर अपने मनमाने तरीके से हर काम करूंगा, ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं रोक पाएंगे फिर। इसलिए फिर उसने मतलब ये वरदान मांगा है ना। तो इस तरह की चर्चा है आज के श्लोक में, हमने कुछ चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है आपका? है? मनोहर ब्रह्मांड है। गर्ग संहिता में लिखा है कि जब गोलोक धाम में गए थे हमारे ब्रह्मा जी और देवता लोग, तो जब उन्होंने पूछा आप लोग किस ब्रह्मांड से आए हैं, तो ब्रह्मा जी सोच नहीं पा रहे थे हम किस ब्रह्मांड से आए हैं। बोले क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा कोई और भी ब्रह्मांड है क्या? तो सत्चंद्राणा नाम की जो सखी थी गोलोक धाम की हंसने लगी, कह रहे आप लोग अपने नाम और गाँव को भी नहीं जानते, आप लोगों को ये भी पता नहीं कि कितने ब्रह्मांड यहाँ बिरजा नदी में भी तैर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने फिर उत्तर दिया कि हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां पर अभी अभी कृष्ण गर्भ का अवतार हुआ और वामन देव के चरण के नाखून से उसमें ऊपर छेद हो गया है, हम उस ब्रह्मांड से आए। तो सत्यचंद्रनाथ ने प्रशंसा की कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है यहाँ पर जिसने अपने ब्रह्मांड का परिचय दिया, है ना। तो ये परिचय दिया था, ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु ने परिचय दिया कि उस ब्रह्मांड से आए हैं जहाँ कृष्ण गर्भ का अवतार हुआ है और वामन देव के चरण नाखून से उसमें छिद्र हो गया है। तो माना गया कि हाँ आप जानते हो कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो। ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। और कोई प्रश्न किसी का? तो मैं प्रश्न करूँ? अच्छा, तो भगवान कृष्ण ने बगदालक मुनि से क्या कहा था जिसके कारण वो बोले कि आपने मेरे पर बड़ा गर्व का भार लादा है? आप तो साक्षात पुराण पुरुष हैं, आपके सामने तो भीष्म ब्रह्मा हो चुके हैं, है ना। तो उन्होंने जो अपनी कथा बताई तो उस समय की कथा बताई जिस समय कौन से ब्रह्मा चल रहे थे, वेद नाम के ब्रह्मा चल रहे थे। उनकी आयु कितनी थी उस समय? 40 साल की आयु। और उनकी 40 साल की आयु हमारे हिसाब से कितनी बड़ी होती है? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है हमारे? 4,32,00,000,000,000 साल का ब्रह्मा जी का दिन उतनी रात, तो पूरा दिन कितने हुआ? 8,64,00,000,000,000। उसमें 360 का गुणा करें फिर 40 का गुणा करें, इतनी आयु होती ब्रह्मा जी की, वेद नाम के ब्रह्मा है। तो जब आए तो बगदाल मुनि से क्या बोले, वो क्या बोले? हाँ तुमको पता होना चाहिए मैं ब्रह्मा हूं, वरदान मांगो, क्या क्या वरदान चाहिए? तो क्या बोले बगदाल मुनि? चल भाग यहां से दुरात्मा, तेरे जैसे भीष्म ब्रह्मा देखे मैंने, तू मुझे क्या देगा? तो क्या हुआ उस समय? आंधी उड़ी, दोनों को उड़ा करके कहां ले गई? दूसरे ब्रह्मांड में ले गई। वहां पर कौन थे? 8 मुख वाले ब्रह्मा ने, 8 मुख वाले ब्रह्मा ने जब देखा कौन है, तो ब्रह्मा जी क्या बोले? ये मेरा चेला है। लेना चाहिए। तो आठवें वाले ब्रह्मा क्या बोले? पानी लाओ और मिट्टी लाओ, मैं क्या करूंगा, टॉयलेट जाऊंगा। तब तक क्या हुआ? आंधी आई और तीनों को उड़ाया। कहां पहुंचाया? सोलह मुख वाले, है ना। फिर उनको भी उड़ाया, फिर कहां? बत्तीस मुख वाले, फिर उनको भी उड़ाया, फिर चौसठ मुख वाले, फिर उनको भी उड़ाया। शेष जी स्थान में पहुंचे और शेष जी ने जब देखा उनको तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, मेरा सौभाग्य है कि आप ब्रह्मा लोग जो है मेरे पास आए हैं, तो मेरा सौभाग्य है। बताइए आप लोगों की क्या सेवा करूँ। तो फिर उन्होंने जो है प्रणाम किया, उनके चरणों में नमस्कार किया और सीख गए, है ना, इस प्रकार से। अच्छा, हिरण्यकशिपु वो जहाँ आपका प्रश्न है पूछिए। हैंडमैग नहीं है, हैंडमैग
देख रहा था कि आपने इतना अच्छा मिलान किया इस श्लोक से, इस कथा का, कि जिससे कि हिरण्यकश्यपु भी समझ ले कि उनके जो ब्रह्मा जी का क्या हाल है।
हाँ, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहा है, तो हमने मधु जो बताया तो वो उससे मिलान हो रहा है। आपका प्रश्न है, मेरे को दो।
हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर विषय वस्तु पूरा कर दिया। मेरा प्रश्न ये कि हमारा ब्रह्मांड जो है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड बताया जाता है।
चार मुख वाले ब्रह्मा है, इसे छोटा ब्रह्मांड है, और बड़े ब्रह्मांड है तो वो आठ मुख वाले, सोलह मुख वाले, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांड है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौरदत्त भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान।